नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डैनियल टाल की पुस्तक रेंडरिंग इन स्केचअप वास्तुकला लैंडस्केप आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन के लिए त्रि आयामी मॉडल को प्रभावशाली प्रस्तुति चित्रों में बदलने की व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह 2013 में प्रकाशित तकनीकी संदर्भ पुस्तक है, जिसका उद्देश्य केवल रेंडर बटन दबाना सिखाना नहीं, बल्कि मॉडल की तैयारी से लेकर अंतिम छवि के परिष्कार तक एक व्यवस्थित कार्यप्रवाह समझाना है। टाल स्वयं लाइसेंसधारी लैंडस्केप आर्किटेक्ट और स्केचअप विशेषज्ञ रहे हैं, इसलिए पुस्तक का दृष्टिकोण डिजाइन पेशेवरों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ा है। इसमें स्केचअप के परिचित कार्यक्षेत्र में काम करते हुए एकीकृत रेंडरिंग प्रोग्रामों का उपयोग समझाया गया है। विषयों में सामग्री, टेक्सचर, प्रकाश, आकाश, पृष्ठभूमि, रेंडर सेटिंग्स, बाहरी और आंतरिक दृश्य तथा फोटोशॉप में पश्च उत्पादन शामिल है। पुस्तक की केंद्रीय उपयोगिता यह है कि वह फोटोयथार्थवादी परिणाम को अलग अलग प्रभावों का संग्रह नहीं, बल्कि मॉडलिंग, दृश्य संयोजन और प्रस्तुति निर्णयों की संयुक्त प्रक्रिया के रूप में रखती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, रेंडरिंग को अंतिम प्रभाव नहीं, मॉडल से प्रस्तुति तक की क्रमबद्ध प्रक्रिया मानना। पुस्तक का प्रमुख आधार यह है कि अच्छा रेंडर केवल रेंडर इंजन की क्षमता से नहीं बनता, उसका परिणाम मॉडल की संरचना, सामग्री के चयन, दृश्य की तैयारी, प्रकाश व्यवस्था और बाद के संपादन सभी पर निर्भर होता है। इसलिए टाल रेंडरिंग को मॉडलिंग के बाद जुड़ने वाली सजावट के बजाय आरंभ से नियोजित प्रस्तुति प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह दृष्टि उन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो साफ दिखने वाले पर तकनीकी रूप से अव्यवस्थित मॉडल को सीधे रेंडर में भेज देते हैं और फिर कमजोर परिणाम को सेटिंग्स की समस्या मानते हैं। व्यवस्थित कार्यप्रवाह में मॉडल को व्यवस्थित रखना, अनावश्यक ज्यामिति हटाना, सामग्री को सही सतहों पर लागू करना और कैमरा दृश्य तय करना पहले आता है। इसके बाद गुणवत्ता और समय के बीच संतुलन बनाते हुए प्रारंभिक परीक्षण रेंडर किए जाते हैं। पुस्तक की रूपरेखा में ड्राफ्ट से अंतिम सेटिंग्स की प्रगति भी इसी व्यावहारिक सोच को दर्शाती है। इससे उपयोगकर्ता हर चरण में त्रुटि पहचान सकता है, बजाय इसके कि लंबे अंतिम रेंडर के बाद समस्या खोजे। वास्तु कार्यालयों में यह तरीका पुनरावृत्ति को नियंत्रित करता है, क्योंकि डिजाइन बदलने पर दृश्य को फिर से तैयार करना अधिक अनुमानित बन जाता है। इस प्रकार पुस्तक का मूल्य किसी एक सॉफ्टवेयर आदेश से अधिक रेंडरिंग संबंधी निर्णयों के क्रम और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करने में है। दूसरा, स्केचअप मॉडल की सफाई और संगठन को दृश्य गुणवत्ता की बुनियाद बनाना, रेंडरिंग के लिए मॉडल तैयार करना पुस्तक का आवश्यक व्यावहारिक पक्ष है। स्केचअप में किसी विचार को शीघ्रता से त्रि आयामी रूप देना आसान हो सकता है, लेकिन प्रस्तुति योग्य मॉडल में सतहों, समूहों, घटकों और सामग्री के उपयोग पर अधिक अनुशासन चाहिए। यदि ज्यामिति में दोहरी सतहें, उल्टी सतह दिशाएं, असंगत किनारे या अनुपयोगी वस्तुएं रह जाएं, तो रेंडर में दाग, गलत छाया, प्रकाश रिसाव अथवा अनावश्यक समय जैसी समस्याएं आ सकती हैं। टाल का मॉडल से प्रस्तुति वाला ढांचा इसलिए केवल सौंदर्य नहीं, तकनीकी तैयारी पर भी बल देता है। सामग्री के नाम और उपयोग को समझदारी से व्यवस्थित करने पर टेक्सचर बदलना, परावर्तन नियंत्रित करना और अलग विकल्पों की तुलना करना सरल होता है। घटकों का उपयोग दोहराए जाने वाले फर्नीचर, पौधों या वास्तु तत्वों में एकरूपता और कार्यक्षमता देता है। यह वास्तुकला, इंटीरियर और स्थल डिजाइन तीनों क्षेत्रों में उपयोगी है, हालांकि प्रत्येक में विवरण अलग होंगे। मसलन, इंटीरियर में फर्नीचर और प्रकाश स्रोतों की सटीकता निर्णायक हो सकती है, जबकि स्थल दृश्य में भूभाग, वनस्पति और दूरस्थ पृष्ठभूमि का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। पुस्तक का उपयोगी संदेश यह है कि रेंडर की गुणवत्ता को सुधारने का आरंभ अक्सर रेंडर सेटिंग में नहीं, मॉडल के भीतर होता है। यह समझ उपयोगकर्ता को समस्या के वास्तविक स्रोत तक पहुंचाती है। तीसरा, टेक्सचर और शेडर के माध्यम से सतहों की भौतिक विश्वसनीयता विकसित करना। फोटोयथार्थवादी दृश्य में सामग्री केवल रंग नहीं होती, किसी सतह का खुरदरापन, चमक, पारदर्शिता, उभार, प्रतिबिंब और प्रकाश के प्रति व्यवहार दर्शक को उसके पदार्थ का आभास कराते हैं। पुस्तक में शेडरलाइट की टेक्सचर सेटिंग्स, बम्प, फिनिश, पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी और स्वयं प्रकाश देने वाली सामग्री जैसे विषय शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह समझाना है कि स्केचअप की साधारण सतह को रेंडरिंग में अधिक विश्वसनीय पदार्थ में कैसे बदला जाए। उदाहरण के लिए, कांच और पानी को केवल नीला या पारदर्शी रंग देने से वे वास्तविक नहीं लगते। उनके लिए पारदर्शिता, प्रतिबिंब और आसपास के प्रकाश का संबंध समझना पड़ता है। इसी तरह लकड़ी, पत्थर या धातु की पहचान अक्सर सूक्ष्म सतही विविधता से बनती है, जिसे टेक्सचर और बम्प के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यहां महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि हर सतह पर अत्यधिक चमक, उभार या उच्च रिजोल्यूशन चित्र लगाने से दृश्य बेहतर नहीं होता। अनुपात, दूरी और दृश्य के उद्देश्य के अनुसार सामग्री का व्यवहार चुनना आवश्यक है। सामग्री का पैमाना गलत हो तो उत्कृष्ट रेंडर इंजन भी अविश्वसनीय परिणाम देगा। पुस्तक का चरणबद्ध स्वरूप उपयोगकर्ता को मानों को याद करने के बजाय उनकी दृश्य भूमिका समझने में मदद करता है। फलतः सामग्री निर्माण को परीक्षण, अवलोकन और समायोजन की प्रक्रिया की तरह अपनाया जा सकता है। चौथा, बाहरी दृश्य में आकाश। HDRI और प्रकाश से स्थान का वातावरण बनाना बाहरी वास्तु और लैंडस्केप रेंडरिंग में प्रकाश केवल वस्तुओं को दिखाई देने योग्य नहीं बनाता, वह प्रस्तावित स्थान की अनुभूति तय करता है। पुस्तक में भौतिक आकाश, HDRI प्रकाश, पृष्ठभूमि और बैकड्रॉप जैसे विषयों का समावेश इस बात की ओर संकेत करता है कि भवन या स्थल को उसके वातावरण से अलग नहीं देखा जा सकता। आकाश का रंग, सूर्य की दिशा, छाया की लंबाई और परिवेश से आने वाला प्रकाश मुखौटे, पेड़, पथ और जल तत्वों के रूप को बदल देते हैं। HDRI जैसे परिवेश प्रकाश स्रोत का उपयोग दृश्य में दिशात्मक और परावर्तित रोशनी के अधिक स्वाभाविक संकेत दे सकता है, विशेषकर तब जब डिजाइन को किसी विशिष्ट मौसम या समय के संदर्भ में दिखाना हो। पृष्ठभूमि का चयन भी प्रस्तुति का निर्णय है। बहुत व्यस्त पृष्ठभूमि भवन को दबा सकती है, जबकि अत्यंत रिक्त पृष्ठभूमि स्थल के पैमाने और संदर्भ को कमजोर कर सकती है। ताल का पेशेवर दृष्टिकोण उपयोगकर्ता को प्रकाश को दृश्य कथा का साधन मानने के लिए प्रेरित करता है, हालांकि लक्ष्य यथार्थपूर्ण और पठनीय संप्रेषण ही रहता है। इस प्रक्रिया में पहले सरल प्रकाश परीक्षण करना उपयोगी है, क्योंकि उससे छाया, सामग्री और कैमरे के संबंध जल्दी समझ आते हैं। अंतिम गुणवत्ता बढ़ाने से पहले प्रकाश की दिशा और वातावरण सही करना समय तथा कंप्यूटिंग संसाधन दोनों बचाता है। अंत में ड्राफ्ट रेंडर, विशेष सुविधाओं और फोटोशॉप पश्च उत्पादन का संतुलित उपयोग पुस्तक रेंडरिंग को एक ही चरण में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं मानती। रेंडर सेटिंग्स में ड्राफ्ट से अंतिम गुणवत्ता की प्रगति, शेडर लाइट के बैच रेंडरिंग, रिप्लेसमी और चौक रेंडरिंग जैसे विशेष फीचर तथा फोटोशॉप में पश्च उत्पादन का अध्याय इस बहुस्तरीय दृष्टि को दिखाते हैं। ड्राफ्ट रेंडर का उद्देश्य अंतिम छवि बनाना नहीं, बल्कि कैमरा, प्रकाश, सामग्री और संयोजन की गलतियों को कम समय में पकड़ना है। जब मूल निर्णय सही हो तब उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स पर समय लगाना सार्थक होता है। बैच रेंडरिंग जैसे विकल्प विभिन्न दृश्यों या कोणों को एक क्रम में तैयार करने की आवश्यकता से संबंधित है, जो प्रस्तुति बोर्ड या ग्राहक समीक्षा में उपयोगी हो सकता है। पश्च उत्पादन का स्थान भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। फोटोशॉप में रंग संतुलन, कंट्रास्ट, वातावरण या सूक्ष्म प्रस्तुति सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन वह अधूरे मॉडल, गलत प्रकाश या असंगत सामग्री का अस्थायी समाधान नहीं है। पुस्तक की व्यावहारिक सीमा यह है कि इसके उदाहरण अपने प्रकाशन काल के रेंडरिंग उपकरणों और शेडरलाइट पर केंद्रित है, फिर भी इसका मूल सबक आज भी लागू है। पहले विश्वसनीय आधार रेंडर बनाइए, फिर संपादन से उसकी पठनीयता और प्रभाव को निखारिए। यह क्रम तकनीकी दक्षता तथा दृश्य नियंत्रण दोनों को बेहतर बनाता है। निष्कर्ष में, रेंडरिंग इन स्केचअप उन वास्तुकारों, लैंडस्केप आर्किटेक्टों, इंटीरियर डिजाइनरों, विद्यार्थियों और दृश्यांकन कर्मियों के लिए सबसे उपयोगी है जो स्केचअप मॉडल बना लेते हैं पर उन्हें स्पष्ट, विश्वसनीय और प्रस्तुति योग्य चित्रों में बदलने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह विशेष रूप से आरंभिक रेंडरिंग उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसकी स्थिति एक शुरुआती मैनुअल और आगे के अभ्यास के संदर्भ ग्रंथ दोनों की है। अनुभवी उपयोगकर्ता भी मॉडल तैयारी, परीक्षण, रेंडर और पश्च उत्पादन के क्रम को औपचारिक रूप देकर लाभ ले सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि वह दृश्य गुणवत्ता को अलग अलग तकनीकी प्रभावों में नहीं बांटती, वह दिखाती है कि सामग्री, प्रकाश, पृष्ठभूमि, कैमरा और संपादन मिलकर डिजाइन का संप्रेषण करते हैं। इसी कारण पाठक केवल अधिक चमकदार चित्र नहीं बल्कि डिजाइन के उद्देश्य के अनुकूल चित्र बनाने की समझ विकसित कर सकता है। समान श्रेणी की बहुत सी पुस्तकें किसी एक रेंडर इंजन के आदेशों या केवल स्केचअप मॉडलिंग पर केंद्रित रहती है। टाल की पुस्तक का अंतर मॉडल से अंतिम प्रस्तुति तक की कड़ी जोड़ने में है तथा वास्तु, स्थल और आंतरिक स्थान तीनों प्रकार के प्रोजेक्टों को संबोधित करने में है। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें वर्णित विशिष्ट सॉफ्टवेयर सुविधाएं समय के साथ बदल चुकी हो सकती है। फिर भी रेंडरिंग की मूल कार्य पद्धति, सतहों की विश्वसनीयता, प्रकाश का नियंत्रण और संयमित पश्च उत्पादन जैसे सिद्धांत स्थायी है। इसलिए यह पुस्तक किसी वर्तमान प्लगइन का पूर्ण अद्यतन निर्देश नहीं बल्कि पेशेवर दृश्यांकन सोच का उपयोगी आधार है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं दानियल ताल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।